गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी यशोदानंदन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Gopulanand Radha Gopulanand Radhe Jai Radha Gopulanand Radha Gopulanand Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol
पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षट्शी श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। रविवार के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इतनी बारिश होने पर भी आप सब यहाँ पर आए हैं, बड़े आभारी हैं आप सबके। कृष्ण कथा की रुचि या कृष्ण कथा में आसक्ति आपको यहाँ लाई है, या कृष्ण में आसक्ति आपको यहाँ लाई है, और ये बड़ा ही दुर्लभ अवसर हम सबको मिलता है इस जीवन में कि हम कृष्ण की कथा सुन सकें। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना ये दरअसल मुक्त आत्माओं का काम है। कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करते हुए उनमें आनंद लेना ये मुक्त आत्माओं का काम है। हम लोग जिस समय कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण की लीला को सुनते हैं या कृष्ण के नाम को सुनते हैं, तो हमें वो रुचि नहीं आती, हमारे अंदर कोई प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण ये है कि अभी हमारी अवस्था बद्ध है। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे एक ऐसे व्यक्ति का जिसको पी लिया हुआ है, उसके लिए दवाई है, औषध है, उसको कुछ मीठा खाना होता है, शुगर कैंडी या मिश्री, लेकिन वो मीठी चीज उसे बहुत कड़वी लगती है क्योंकि वो बीमार है, लेकिन जब तक वो खाएगा नहीं वो ठीक नहीं होगा। इसी तरह कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण ये बद्ध अवस्था में आनंद नहीं देती, इसीलिए बताया जाता है कि ये मुक्त जीवात्माओं के लिए है। जैसे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, ये लोग चर्चा करते हैं कृष्ण कथाओं की और ये रुचि लेते हैं, आनंद लेते हैं उनमें। लेकिन फिर भी हम सब के लिए यही एक मार्ग है कि हमें इन कथाओं के द्वारा ही अपनी बद्ध अवस्था को दूर करना है, और उसमें सबसे प्रथम है भगवान के नामों का उच्चारण। तो हम लोगों ने प्रारंभ किया था मुकुंदमाला स्तोत्र के पहले श्लोक से, जिसमें राजा कुलशेखर, जिनके बारे में हम लोग कई बार सुन चुके हैं कि कितनी आसक्ति थी उन्हें कृष्ण की लीलाओं से, वो इतना उसमें लीलाओं में उतर जाया करते थे कि उन्हें ऐसा प्राय लगता था कि जैसे ये लीलाएं सामने चल रही हैं, और फिर वो उसमें भाग लेने के लिए भी बड़े आतुर हो जाया करते थे। तो उनका वो स्तर, उस स्तर तक वो पहुंचे, उसका कारण या उसका मार्ग उन्होंने अपने इस मुकुंदमाला स्तोत्र में दिया है कि कैसे हम लोग शुरुआत की अवस्था से लेकर सर्वोच्च अवस्था, अर्थात जो उनकी अवस्था थी जिसमें भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं में उनको इतनी आसक्ति थी, उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले श्लोक में वो भगवान के कई नामों को लेते हैं और फिर ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे मुकुंद, हे मुक्ति प्रदाता कृष्ण, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि हम सदैव इन नामों को लेते रहें। अर्थात वो सबसे पहले बतलाते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, याचना करनी चाहिए। प्रार्थना याचना इनमें अंतर होता है। प्रार्थना हम लोग करते हैं साधारण तौर पर, जब याचना करते हैं तो उसको कहा जाता है जैसे गिड़गिड़ाना, किसी के सामने भिक्षा मांगना, याचक के रूप में, एक भिक्षुक के रूप में। और ऐसी याचना, ऐसी भिक्षा, कृपा की भिक्षा हमें मांगनी चाहिए। हम सबको एक कृपा का भिक्षुक बनने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी भिक्षा कृष्ण से मांगनी चाहिए। तो आइए इस श्लोक को हम लोग फिर से पढ़ते हैं ताकि भगवान के अलग अलग नामों को हम लोग गा सकें, उच्चारण कर सकें। तो आप लोग दोहराइएगा इस नामों को। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे आलापनिं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे आलापनिं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द आप में से कोई दोहराएंगे इसको श्री वल्लभेति वरदेति हे मुकुंद हे भगवान कृपया मुझे अपने नामों का उच्चारण बारंबार करने की शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं बार बार आपको पुकार सकूं श्री वल्लभ वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविद ये भगवान के अलग अलग नाम हैं नाथ जगन निवास और नागशयन इन अलग अलग नामों के अर्थों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे पहला चर्चा हमने किया था श्री वल्लभेति कि भगवान को श्री वल्लभ कहते हैं इसका अर्थ है कि भगवान श्री अर्थात लक्ष्मी देवी को बड़े प्रिय हैं वल्लभ और इससे हम लोग ये भी जान सकते हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं कोई एक व्यक्ति ही किसी दूसरे को प्रिय हो सकता है हम ये नहीं कह सकते कि एक निराकार हमें बड़ा प्रिय है जिसका कोई आकार ही नहीं है जिसका कोई रूप ही नहीं है वो हमें प्रिय कैसे हो सकता है उससे हम कैसे आदान प्रदान कर सकते हैं तो इसलिए भगवान एक व्यक्ति हैं और वो लक्ष्मी देवी को बड़े प्रिय हैं श्री वल्लभेति वर देती भगवान वरदान देते हैं वरदान देने वालों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं और कैसा वरदान वो देते हैं ऐसा वरदान देते हैं कि हमारे हृदय में आध्यात्मिक आनंद इसकी अनुभूति हमें कराते हैं और उसकी पराकाष्ठा तक ले जाते हैं तीन स्तरों पर या तीन स्थितियों में ये हमें मिलता है सबसे पहला आनंद हमें मिलता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं भगवान का नाम लेने से हृदय शुद्ध होता है साफ हो जाता है एकदम और फिर दूसरी चीज़ उस हृदय में उस शुद्ध हृदय में हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं और फिर जैसे ही कोई भगवान के दर्शन करता है ये स्वाभाविक है कि वो आध्यात्मिक आनंद में सराबोर हो जाता है ये सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं इसीलिए संक्षेप में इसको कह रहे हैं कि ये वरदान है भगवान के तो इस तरह तीन स्तरों पर भगवान हमें आनंद देते हैं पहले हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं अपने नाम के द्वारा फिर अपने आप को प्रकट कराते हैं हमारे हृदय में और फिर जब भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है तो इस तरह से वर देती और भी अन्य वर भगवान देते हैं हम लोग इस पर बड़े विस्तार से चर्चा कर चुके हैं इसलिए आगे बढ़ेंगे तो श्री वल्लभेति वर देति दया परेति का अर्थ है भगवान बड़े दयालु हैं सब पर दया करते हैं क्योंकि एक भगवान ही हैं जो ऐसे विरोधी बद्ध जीव की भी, बद्ध जीव का भी पालन करते हैं, उनसे दयालु और कोई नहीं है। हम लोग चर्चा कर रहे थे दो दिन पहले कि किस प्रकार जीव गोस्वामी ये चर्चा करते हैं कि भगवान की भक्ति या कृष्ण की भक्ति क्यों करनी चाहिए, और कृष्ण की भक्ति करने के वो कई कारण देते हैं, कई अलग अलग कारण देते हैं कि वो भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उनसे सब कुछ आता है, सारे जीव उनसे आते हैं, अन्य कई कारण देते हैं। लेकिन फिर अंत में सबसे महत्वपूर्ण कारण वो देते हैं, वो कहते हैं कि इस सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि कृष्ण सबसे दयालु हैं, बहुत कृपा करते हैं, और उसको साबित करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद से वो कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्घाम सयापाय अदप्य साधवी। असाधवी जो आई थी उसको भी भगवान ने धात्री का रूप अपने धाम में दिया, तो ऐसी बकी अर्थात पूतना को जो उन्हें मारने आई थी भगवान ने गोलोक में स्थान दिया। कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, फिर इनसे दयालु और कौन हो सकते हैं। तो इसीलिए श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति। हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे जहाँ हमने बीच में ये चर्चा छोड़ी थी कि किस प्रकार भगवान भक्त प्रियेति हैं, भक्तों को बड़े प्रिय हैं। दरअसल भगवान भी भक्तों को प्रिय हैं और भक्त भी भगवान को बहुत प्रिय हैं, दोनों का आदान प्रदान होता है। भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं, हम लोगों ने सुने हैं कि जहां पर भक्तों ने भगवान को नहीं त्यागा, बाकी सारे कष्ट सहे लेकिन भगवान को नहीं त्यागा। जीसस क्राइस्ट, श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कि जीसस जब आए तो बड़ा कष्ट हुआ उन्हें, लोगों ने बड़ा कष्ट दिया, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं त्यागा, भगवान के प्रचार को नहीं त्यागा, वो प्रचार करते रहे। बहुत स्थानों पर कष्ट हुआ, विरोध हुए, और इतना विरोध बढ़ गया कि स्वयं उनके ही अनुयायी उनका विरोध करने लगे, लेकिन फिर भी जीसस ने भगवान के नाम के प्रचार को, भगवान के प्रचार को नहीं त्यागा, भगवान को नहीं त्यागा। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जीसस भगवान के सही पुत्र हैं। हम सब भी भगवान के पुत्र हैं, भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। लेकिन हम लोग भगवान के सही पुत्र नहीं हैं, असली पुत्र नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं जो हमारे पिता हमसे करवाना चाहते हैं, लेकिन जीसस ने वो कार्य किया। हरिदास ठाकुर, उनको भी कितने कष्ट हुए, कई बाजारों में उनको पीटा गया, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, प्रहलाद महाराज, उनके पिता ने उन्हें कितना कष्ट दिया लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कष्टों में भी भक्त भगवान को नहीं भूलते, तो इसीलिए भगवान को भक्त बड़े प्रिय हैं, क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि ये मेरा भक्त ये इतना समर्पण कर रहा है तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्, कि जो व्यक्ति जिस तरह का आदान प्रदान मुझसे करने आया है, जितना समर्पण, जिस प्रकार की भक्ति वो मेरी कर रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उसके प्रति कुछ करूं। भगवान बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 एक अवसर ऐसा आता है कि जहां भगवान कहते हैं कि बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, न पा रहे हम, गोपियों से वो कहते हैं कि मैं आपकी भक्ति के बदले आपको कुछ नहीं दे सकता,
आपकी भक्ति ही आपका शुल्क है। तो भगवान हार जाते हैं भक्तों की भक्ति से, भगवान बंध जाते हैं भक्तों की भक्ति से, और कोई चीज उन्हें बांध नहीं सकती। बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, कोई भगवान को नहीं बांध सकता, लेकिन केवल भक्ति। इसीलिए भक्त प्रियेति। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहला, वो भक्तों का रक्षण करते हैं। सदैव कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता? इतने विश्वास से भगवान कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो स्वयं उनका रक्षण करते हैं, और जिनका रक्षण भगवान स्वयं करते हैं उनका नाश कभी नहीं होता। इसीलिए सबसे पहला कार्य वो करते हैं कि वो रक्षण करते हैं। दूसरा, वो कभी भूलते नहीं हैं। जीव भगवान को भूल जाता है, कभी कभी भक्ति करते हुए भक्त भी भगवान को भूल जाते हैं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। ये भगवान का गुण है, ये भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। इस समाज में हम लोग कभी कभी किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है तो भूल जाते हैं, कभी किया होगा याद नहीं रहता है। कोई याद दिलाता है कि आपको याद है कुछ साल पहले आप ऐसी स्थिति में थे, तब मैंने आपके साथ ऐसा किया था, तो हाँ शायद होगा, ध्यान नहीं है। जैसे जब द्रोणाचार्य ये अपने मित्र के पास गए, अपने मित्र को याद दिला रहे थे कि तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम अपना आधा राज्य मुझे दोगे जब तुम राजा बनोगे, याद है? कहा नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ वचन याद नहीं है। तो ये हमारी स्थिति है, लेकिन भगवान स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ी भी भक्ति अगर कोई उनकी करता है, थोड़ी भी सेवा करता है, तो उसको भूलते नहीं है, याद रखते हैं। ये भगवान का गुण है, तो वो हमेशा याद रखते हैं। तीसरा, वो सदैव एक पिता के समान हमसे प्रेम करते हैं। हम चाहे उनकी ओर देखें या ना देखें, लेकिन भगवान सदैव अपने भक्तों का रक्षण करते हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं जैसे एक पिता करते हैं। तो पुत्र के लिए जो भी चाहिए उसको वो प्रदान करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी एक पिता का एक पिता के समान कार्य करते हुए वो हमको कभी कभी दंड भी देते हैं। ऐसे देखा जाता है कि भक्त हैं लेकिन बड़ा कष्ट हो रहा है, जीव है, बद्ध जीव है, बहुत कष्ट सहता है, फिर कहता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। दरअसल हमारी ये जो अवस्था आती है भगवान से दूर जाने की, ये बड़ी विकट स्थिति है जीव के लिए। अब हम लोग इतनी चर्चा करते हैं कि भगवान से भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन देखिए जीव की बद्ध अवस्था में बड़ा कठिन है भक्ति करना। सबसे पहले तो ये जानना कि भगवान है या नहीं है। अगर वो जान भी जाए कि ठीक है भगवान है, तो फिर उनका रूप है या नहीं है। समाज में कितनी बड़ी विडंबना है, कितना उत्पात मचा हुआ है, कितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं। अच्छा, अगर भगवान का रूप पता भी चल जाए कि ठीक है रूप है भगवान का, तो कौन है भगवान? इतने सारे लोग हैं, कोई कहता है गणेश हैं, कोई कहता है शिव जी हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, इतने सारे भगवान हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं होता भगवान के लिए कि उन्होंने ये सब नहीं किया होता? बालक जन्म लेता और जन्म लेते ही उसको पता चलता एक ही भगवान है कृष्ण, एक ही नाम उच्चारण करना है हरे कृष्ण महामंत्र, एक ही भगवान की भक्ति करनी है, एक ही ग्रंथ है भगवद गीता, उसे पढ़ना है। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो फिर भगवान ने ये इतने सारे ग्रंथों की रचना, इतने सारे धर्मों की रचना क्यों की है? और फिर न केवल धर्मों की, इतने सारे अधर्मों की भी रचना भगवान करते हैं, खुद करते हैं, अपने भक्तों को भेजकर अधर्म की रचना करवाते हैं। बुद्ध के रूप में खुद आए और अधर्म का उन्होंने प्रचार किया, शास्त्रों को त्याग दो। वैसे एक दृष्टि से अधर्म का प्रचार नहीं था, बाहरी दृष्टि से वह धर्म लगता है, लेकिन उनकी मूल शिक्षा थी कि आप मेरा पालन करो, तो वो सबसे बड़ा धर्म है वैसे, लेकिन बाहरी दृष्टि से था। शिव जी को भेजा शंकराचार्य के रूप में अधर्म का पालन, अधर्म का प्रचार कराने के लिए। तो देखिए, भगवान धर्म का भी प्रचार करते हैं, अधर्म का भी प्रचार करते हैं, और फिर ये भी हम सबसे आशा करते हैं कि हम उनको समर्पण करें। तो कैसे हो सकता है? केवल एक ही होता तो व्यक्ति समर्पण कर देता, लेकिन स्वयं धर्म का भी प्रचार करते हैं, फिर अधर्म का भी प्रचार करते हैं, और फिर ये कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। ये तो धोखा देने वाली बात है, सीधी सीधी बात नहीं करते हैं भगवान। अगर यही कहना था सर्वधर्मान परित्यज्यम, तो फिर धर्म देने की आवश्यकता क्या थी, अधर्म देने की आवश्यकता क्या थी? जीव वैसे ही समर्पण कर देता। तो आवश्यकता थी, इसीलिए भगवान ने दिया, क्योंकि हर जीव के अपने अपने स्वभाव हैं और उस स्वभाव के अनुसार वो भगवान की भक्ति करता है, या उस स्वभाव के अनुसार वो आध्यात्मिक रुचि बढ़ाता है, और इस कारण से भगवान बाध्य हो जाते हैं ये सारी चीजें करने के लिए, कर्म कांड देने के लिए, ज्ञान कांड देने के लिए, उपासना कांड देने के लिए, और फिर कुछ विरले लोगों के लिए, कुछ विरले भक्तों के लिए शुद्ध भक्ति देने के लिए। तो इस कारण से इतने सारे धर्म बने हैं, धर्म हैं, अधर्म हैं, लेकिन भक्त वो केवल भगवान की भक्ति करते हैं, केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं। भक्तों के लिए कहा जाता है कि उनको ऐसा ऐसी भावना उनके हृदय में होती है कि उनको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता, उनका चिंतन केवल कृष्ण है। अनन्याश चिंतयंतो माम, और कोई अन्य चिंतन नहीं है, केवल कृष्ण का चिंतन। तो ये भी भक्तों के गुण हैं। फिर भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए शास्त्र देते हैं और फिर स्वयं आते हैं। देखिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं भगवान केवल यहां से हमें निकालने के लिए। शास्त्र देते हैं जिसके द्वारा हम कुछ सीखकर इस जगत से जा सकें, और फिर स्वयं भी आते हैं, ये सिखलाते हैं कि कैसे भक्ति करनी है, क्या कार्य करना है, और इस तरह से हम सबको वो ज्ञान देते हैं। जब भगवान आते हैं तो उनके साथ उनके भक्त आते हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी आए वृंदावन के, उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया भक्ति का। रूप गोस्वामी समझाते हैं कि किस प्रकार अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा। वो कहते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो संग त्यागना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने यह संस्था बनाई केवल इसलिए कि हम लोग संग कर सकें, एक दूसरे के साथ में आ सकें और साथ में आकर भक्ति कर सकें। अब ये संग, ये दो प्रकार का होता है, इसको हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि साधारणतः हम लोग संग मानते हैं कि किसी के साथ में रहना बस, लेकिन आचार्यों ने समझाया है, विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि संग दो प्रकार का होता है। एक तो वो जब हम किसी के साथ में रहते हैं, किसी के संग में रहना, और दूसरा आसक्ति। इन दोनों को संग कहा गया है, और जब रूप गोस्वामी संग त्यागने को कहते हैं तो वो इन दोनों को त्यागने के लिए कहते हैं, पहला संग और दूसरी आसक्ति। संग अर्थात अभक्तों से संग, इंद्रिय भोगियों के साथ संग, कामुक व्यक्तियों के साथ संग, इसको त्यागना चाहिए। और दूसरा आसक्ति। आसक्ति किससे? केवल इच्छाओं या भौतिक जगत से नहीं, हमें आसक्ति त्यागनी होती है अपने अर्जित स्वभाव से, हमें आसक्ति त्यागनी होती है अपने संग्रह किए हुई चीजों से। तो संग कैसा होना चाहिए? हमें अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो शास्त्र के अनुसार उचित नहीं है, तो फिर हमारी आसक्ति बढ़ती है। और आसक्ति बढ़ने से क्या होता है, जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, संग करने लगते हैं, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, तो बहुत ज्यादा संग करने से आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से भगवान में श्रद्धा कम हो जाती है और हम लोग अपराध करने लगते हैं। भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं तो हमारे लिए संग कितना महत्वपूर्ण है इसको समझना चाहिए, क्योंकि अगर सही संग नहीं होगा तो हमारी आसक्तियां बढ़ जाती हैं। जैसे अगर हम किसी भौतिकवादी व्यक्ति का संग करते हैं तो हमारी आसक्ति धन अर्जन करने में बढ़ जाएगी। हम किसी कामुक व्यक्ति का संग करते हैं तो हमारी आसक्ति काम वासना में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम किसी भक्त का संग करते हैं जो इस जगत में कोई रुचि नहीं रखता, केवल कृष्ण नाम में जिसे रुचि है, तो हमारी कृष्ण में रुचि बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें संग ऐसा करना चाहिए जिसके द्वारा कृष्ण में रुचि बढ़े, भगवान में रुचि बढ़े और हम भी भगवान के भक्त बन सकें और जिसके द्वारा भगवान को प्रिय हो सकें। तो इसीलिए भक्त प्रियेति। और भगवान क्या करते हैं, भगवान जो भक्त उनको समर्पण करता है उसके जीवन का नियंत्रण करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति उन्हें पूर्ण समर्पण कर देता है तो फिर उसके जीवन में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। और आगे चलकर इतना ही नहीं, भगवान एक दृष्टि से तो निर्देश शास्त्रों में देते हैं लेकिन दूसरी तरफ सीधे निर्देश सीधे हृदय में देते हैं। तेने ब्रह्म हृदये आदि कवये, जीव को जब वो उस स्तर पर आ जाता है जहां भगवान की भक्ति करता है और भगवान से एकाकार हो जाता है, एकाकार का मतलब ये नहीं कि भगवान में विलीन हो जाता है, एकाकार का अर्थ ये है कि जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान की योजना है, वही जीव की योजना होती है। ऐसी स्थिति को भगवान से एकाकार होना कहते हैं। और जब जीव भगवान से एकाकार हो जाता है तो भगवान उसको सीधे उसके हृदय में निर्देश देते हैं। तो कितने सारे प्रयासों के द्वारा भगवान जीव को इस जगत से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं लेकिन जीव फिर भी यहीं पर पड़ा रहना चाहता है। आगे चलकर भगवान जीव की जितने भी मोह है, जितनी भी भ्रांतियां हैं, उसको निकाल देते हैं। और फिर अंतिम अवस्था, यहां बहुत सुंदर वर्णन इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कर रहे हैं कि भगवान ने शुरुआत की थी नाम देने से, कि जहां पर नाम के द्वारा हृदय शुद्ध होता है, फिर भगवान कुछ निर्देश देते हैं, प्रकट होते हैं, ये सारे होते होते प्रभुपाद लिखते हैं कि देन ही सर्व्स द सर्वेंट, फिर भगवान सेवक की सेवा करने लगते हैं। अर्थात इतना प्रिय हो जाता है वो भक्त उन्हें कि फिर वो उससे दूर नहीं रह पाते, उसकी सेवा में आनंद लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये भगवान को भक्त प्रिय होते हैं। तो जब तक हम लोग अपने इन आसक्तियों को, अपने संग को ठीक नहीं करते, आसक्तियों को नहीं त्यागते, आसक्ति भी किससे, अपने अर्जित स्वभाव से, हमने जो पूर्व जन्म में कार्य किए हैं उसके द्वारा हम एक स्वभाव को लेकर पैदा होते हैं, ये हमारा स्वभाव है। लोग कहते हैं ना कि उसका स्वभाव कुछ ठीक नहीं है, वो ज़्यादा किसी से मिलता नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति उसका स्वभाव ऐसा है कि वो सबसे मित्रता करता है, बड़ा अच्छा स्वभाव है। तो ये स्वभाव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार लेकर हम इस शरीर में आते हैं लेकिन उसको भी त्यागना होता है। इस जीवन में भी हम कुछ स्वभाव लेते हैं, उसको भी त्यागना होता है और तब जाकर हम आगे बढ़कर भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान को प्रिय हो सकते हैं। अगला वो कहते हैं भव लुंठन को विदेथी। भव याने ये भव सागर, ये जन्म मृत्यु का चक्र जिसमें हम लोग आकर गिर गए हैं। आचार्य समझाते हैं कि हम लोग घास के तिनकों के समान हैं जो इस सागर में गिरे हुए हैं, और सागर की लहरें अर्थात सुख और दुख की लहरें, कई जन्मों की लहरें, अलग अलग योनियों की लहरें हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही हैं, और हम लोग केवल इसी में पड़े हुए हैं, भव सागर में। लेकिन कृष्ण मुकुंद ये ऐसे एक ही दयालु व्यक्ति हैं जो भव लुंठन को विदेती, इस भव सागर से हमारे, इस भव सागर से हमें जो आसक्ति है उसको काट देते हैं। दरअसल हम लोग इस जगत में कष्ट क्यों भोगते हैं? आसक्ति के कारण। इस जगत से, इस भव सागर से हमें बड़ी आसक्ति है, समुद्र हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हम जाना नहीं चाहते हैं बाहर। लेकिन भगवान आकर इस आसक्ति को काट देते हैं, और जैसे ही आसक्ति कट जाती है, ये एक लंगर के समान है, जैसे ही इस लंगर को उठा दिया जाता है, हमारी नाव अपने आप इस भवसागर को पार कर जाती है, और वो लंगर है आसक्तियों का। तो देखिए श्रील प्रभुपाद ने कितना सुंदर व्यवस्था हम सबके लिए की है कि हम अपनी अपनी आसक्तियों को काटें। जैसे कार्यक्रम होते हैं, हमने शुरुआत में बताया कि इतनी वर्षा हो रही है, लेकिन आप सब यहाँ पर आए हैं तो आपको आसक्ति नहीं है अपनी सुविधाओं से। घर में आपको सुविधाएं हैं, आप आराम से घर में बैठ सकते थे, कुछ इतनी ठंड हो रही है तो कुछ गरम गरम पकौड़े बनाकर खा सकते थे, बारिश के समय खाने चाहिए, हाँ तो कुछ कर सकते थे, लेकिन उसको आपने त्याग दिया। देखिए कितना बड़ा त्याग किया है आप लोगों ने, पकौड़ों को त्याग दिया है, वो भी खास करके पनीर के पकौड़े होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, तो आपने उसको त्याग दिया, हाँ। तो आसक्ति ये सही है, कोई ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सही है, क्या आवश्यकता थी आपको इतनी बारिश में यहां मंदिर आने की? तो ये भगवान अंदर से कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी आसक्तियों को काट रहे हैं। कई भक्त हैं जो सुबह सुबह मंगल आरती आते हैं 4:30 बजे, तो देखिए सोने से आसक्ति कट कर दी भगवान ने। बहुत लोगों को आसक्ति होती है नींद से, बहुत कम लोग छोड़ पाते हैं इस आसक्ति को। एक बार एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, और वो कहीं से आए थे, गोवा या कहीं किसी स्थान से, और उन्होंने आके कहा मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना है, मैं कोई शादीवादी नहीं करूँगा, मैं केवल ब्रह्मचारी रहूँगा, तो मैं आश्रम में आना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि भाई ऐसे अचानक तो नहीं लेते हैं, आप आते रहिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बाहर नहीं रहना है, बस ये भौतिक जगत में बहुत हो गया, अभी केवल ब्रह्मचारी बनना है। तो हमने कहा आप नियम जानते हैं ब्रह्मचारी आश्रम के? उन्होंने कहा आप जो बोलेंगे वो करेंगे। तो हमने एक ही पहला नियम बताया कि यहाँ पर सुबह सुबह 3:30 बजे उठना पड़ता है। उसने कहा हरे कृष्णा कोई चांस नहीं है, बोले सुबह नहीं उठ सकता मैं, बाकी आप जो कहोगे वो करें। हमने कहा पहली चीज नहीं कर रहे हो तो बाकी कैसे करो? हमने कहा अगर आप नहीं उठ सकते तो आश्रम में नहीं रह सकते। तो चले गए वापस। तो देखिए कितनी तीव्रता थी कि भौतिक जगत कहीं कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नींद चाहिए। तो बहुत कम लोग इस आसक्ति को त्याग पाते हैं। हम लोग देखते हैं मंगल आरती में भी बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जितने आते हैं बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि इतनी तपस्या, इतनी बारिश में, ठंड में वो लोग आते हैं मंदिर। आप लोगों से भी प्रार्थना है, आप लोग भी नियम बनाइए। दरअसल भक्ति में एक चीज बड़ी जरूरी है, निश्चय। रूप गोस्वामी बताते हैं उत्साह निश्चय। आप लोगों में उत्साह है, लेकिन क्या करें नींद ही नहीं खुलती है, तो निश्चय करना चाहिए। क्या निश्चय? कि कम से कम दिन में एक बार मंगल आरती जाऊंगा। थोड़ा कठिन है, चलो हफ्ते में एक बार, कम से कम हफ्ते में एक बार मंगल आरती जाऊंगा। ये तो ज्यादा कठिन नहीं है, कि ये भी कठिन लग रहा है। महीने में एक बार, हाँ? साल में एक बार
तो
एकादशी पे तो कम से कम, एकादशी महीने में दो बार आती है, तो हमें ये निश्चय करना चाहिए। ये सरल सरल चीजें हैं भक्ति की, जो हमें बड़ी जल्दी से आगे बढ़ा देती हैं भक्ति में, बहुत जल्दी प्रगति हो जाती है। हमें बड़ा सरल लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, मंगल आरती में नहीं गए तो दर्शन आरती में तो दर्शन हो ही जाते हैं भगवान के, गोकुलानंद जी कहाँ जाने वाले हैं, आज नहीं तो कल दिख जाएंगे। लेकिन कम से कम एकादशी के दिन तो ये निश्चय करना चाहिए, ये निश्चय बड़ा जरूरी है। तो सब लोग निश्चय कीजिए कि कम से कम एकादशी के दिन, और दिन तो नहीं क्योंकि और दिन ठीक है आसक्तियों में लगे हुए हैं, लेकिन एकादशी के दिन सारी आसक्तियां कट। सुबह सुबह आएंगे, सोएंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं, अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, ये सारी आसक्तियों को कट करना है। आपको पता है एक हमें भक्त बंगाल से बता रहे थे, बंगाल से आए थे, उन्होंने कहा एकादशी के दिन हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है। हमने कहा क्यों? बोले बंगाल में अगर कोई व्यक्ति राइस नहीं खाए तो फिर वो जिएगा कैसे, बड़ा उनके लिए कठिन हो जाता है बिना राइस खाए, तो एक दिन बड़ा कष्ट होता। तो ये आसक्तियों को काटिए। तो ऐसा निश्चय करना चाहिए कि हम रोज मंगल आरती, रोज नहीं सॉरी, हाँ हर एकादशी को कम से कम मंगल आरती आए। आएंगे आप लोग सब? क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया? तो आप लोग आएंगे सब लोग? ब्रह्मचारी खाली हरि बोल बोल रहे हैं, वो तो वैसे भी आते हैं हर इधर से। अच्छा, गृहस्थ भी बैठे हैं थोड़े से। निश्चय कीजिए और प्रयास कीजिए। हम लोगों को ये दो कार्य करने होते हैं, पहला निश्चय और फिर प्रतियोगिता, किससे? अपने आप से। हमने एक निश्चय कर लिया कि हमें एकादशी पर मंदिर जाना है मंगल आरती में, फिर हमारी प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सुबह उठते हैं, अलार्म लगाते हैं, लेकिन फिर प्रतियोगिता चलती है। मन कहता है 15 मिनट और सो जाओ, अलार्म बज रहा है, 3:30 का लगाया या 4:45 का लगाया है कि एकादशी है, जाना है, निश्चय किया है, फिर प्रतियोगिता, मन कहता है 15 मिनट, क्या फर्क पड़ता है, आप बड़े थके हुए हो, रात को देर से सोए थे, दिन भर कार्य किया है, तो 15 मिनट ठीक है। फिर वो हाथ अलार्म पे पड़ जाता है, 15 मिनट के लिए व्यक्ति सो जाता है, जब सो के उठता है तो 8 बज गए हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है? कुछ गृहस्थ बड़े गुस्से से देख रहे हैं हमें। भक्त, ये गृहस्थ शब्द यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़ा कष्ट होता है कुछ लोगों को। तो भक्त, कुछ भक्त हमें बड़े गुस्से से देख रहे हैं कि 8 बजे का हमारी सारी जो छुपी हुई बातें हैं ये बाहर सबके सामने क्यों बता रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन निश्चय ये बहुत आवश्यक है भक्ति में, और फिर प्रतियोगिता अपने मन से। और जब ऐसी दृढ़ता हम भगवान के समक्ष दिखलाते हैं कि सोचिए आप लोग एकादशी के दिन सब दृढ़ता से आ गए मंगल आरती में, और कृष्ण ने देखा, गोकुलानंद जी ने देखा, तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये भक्त ने इतना प्रयास किया, ये हमारा प्रयास है। हम भक्ति अपने प्रयास से नहीं करते हैं, हम भक्ति करते हैं कृष्ण की कृपा से, भक्तों की कृपा से, लेकिन वो आती है हमारे प्रयास से। कभी कभी लोग कहते हैं, एक बार एक भक्त हमें कह रहे थे कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो हम आ जाएंगे मंगल आरती में, या भगवान की इच्छा होगी तो हम करेंगे। नहीं, भगवान क्यों इच्छा करेंगे आपके लिए? इच्छा हमें करना है, प्रयास हमें करना है, फिर कृपा वो करेंगे। भगवान केवल कृपा करते हैं, भगवान आपके लिए क्यों इच्छा करेंगे? आपको स्वतंत्रता दी है, आप इच्छा कीजिए। तो जब ऐसे छोटे छोटे चीजों में हम भगवान को अपनी दृढ़ता दिखाएंगे, तब भगवान ये जो सागर है भव लुंटन को विदेती, फिर हमारी आसक्तियों को काट देंगे। फिर आगे नाथेति, एक ही नाथ है। वैसे तो हम जगत में देखते हैं बहुत सारे नाथ हैं, कई लोगों के सरनेम भी होते हैं नाथ, वैसे बहुत सारे नाथ हैं। किसी के लिए कोई परिवार का सबसे बड़ा वही नाथ है, किसी के लिए समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वही नाथ है, लेकिन एक ही नाथ है और वो है भगवान श्री कृष्ण। और वो कौन है? नागशयनेति, जो अपना विस्तार करते हैं विष्णु के रूप में, और फिर नाग पर बड़े आसानी से आराम से शयन करते हैं। तो नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेत, जगन निवासित का अर्थ होता है कि सारा जो जगत है वो उनमें निवास करता है या वो सारे जगत के निवास हैं। ये जितने भी ब्रह्मांड हैं जो हम लोग देखते हैं ये सब भगवान में निवास करते हैं। हम जानते हैं कि जब भगवान अपने विस्तारित रूप महाविष्णु के रूप में श्वास बाहर छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, और फिर जब वो सांस अंदर लेते हैं तो सारे के सारे जो ब्रह्मांड हैं वो फिर से उनमें विलीन हो जाते हैं। इसीलिए जगन निवासेत, सारे जितने जगत हैं जितने ब्रह्मांड हैं उनका वो निवास है। तो ऐसे भगवान, और फिर इतने सारे नामों को लेने के बाद अंतिम जो वाक्य वो कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, आलापनिम प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंद। हे मुकुंद, ये जो सारे आपके नाम हैं जिनको मैंने अभी अभी बतलाया कि आप नाथ हैं, नाग शयन करते हैं, आप जगत निवास हैं, आप वल्लभ श्री वल्लभ हैं, आप वर देने वाले हैं, आप भक्त प्रिय हैं, ये सारे नाम जो हैं, आलापनिम प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंदम, एक ही मेरे ऊपर ये आप कृपा कीजिए। कुरु, क्या कृपा कीजिए मेरे ऊपर हे मुकुंद? आलापनिम प्रतिदिनम, कि हर रोज हर समय हर क्षण मैं आपके नामों का उच्चारण कर सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद भगवान के नाम के विषय में बहुत सुंदर लिखते हैं, वो कहते हैं कि भगवान के हजारों नाम हैं और हर नाम बड़ा शक्तिशाली है। और कैसी शक्ति है? जितनी शक्ति भगवान में है उतनी ही शक्ति भगवान के हर एक नाम में है, और व्यक्ति भगवान का नाम सदैव जप कर सकता है और इसके द्वारा वो सदैव भगवान का संग कर सकता है। तो देखिए प्रभुपाद बतला रहे हैं कि भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, जितने शक्तिशाली भगवान हैं उतना ही शक्तिशाली उनका नाम है, और अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो फिर भगवान का साक्षात संग करता है। कई बार लोग कहते हैं आपने भगवान को देखा है, भगवान कहाँ है हमें दिखाइए, तो उनसे कहना चाहिए आप नाम लीजिए, आप जप कीजिए, भगवान स्वयं आपके सामने प्रकट होंगे। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति जप नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, तब तक भगवान क्यों आएंगे? हम उन्हें बुलाएंगे ही नहीं तो भगवान क्यों आएंगे? तो इसीलिए भक्ति मार्ग को जब श्रील प्रभुपाद ने भक्तों को दिया, अपने अनुयायियों को दिया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात नाम जप बतलाई। चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति के सारे अंगों को जब देते हैं तो उसमें से बतलाते हैं कि उसमें से कुछ प्रमुख हैं, फिर उनमें से भी कहते हैं कि नाम जप सबसे ज्यादा प्रमुख है। तो इसीलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का उच्चारण करते रहें, जिसका वर्णन यहाँ पर मुकुंदमाला स्तोत्र के पहले श्लोक में राजा कुलशेखर जो आलवारों में से एक हैं वो कर रहे हैं, और फिर इसके बाद आगे के श्लोकों में और भी बड़ा बड़ा सुंदर बहुत अच्छा वर्णन भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, अपनी स्थिति का वो करने वाले हैं। तो इसलिए बड़ा सुंदर ग्रंथ है, श्रील प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी कि वो इसको पूरे ग्रंथ को अनुवाद कर सकें, उस पर टीका लिख सकें, लेकिन वो सारे श्लोकों पर लिख नहीं पाए, कुछ ही श्लोकों पर लिखा, और फिर दूसरे अन्य ग्रंथों को वो अनुवाद करने लगे, और फिर बाद में उनके अनुयायियों ने इस ग्रंथ को पूरा किया। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रभुपाद इसके कई श्लोकों को, विशेष करके एक श्लोक है जहाँ पर वो बतलाते हैं कि अभी राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि अब इस समय ये जो मेरी अवस्था है, मैं बहुत अच्छे तरह से अपने शरीर को रख पा रहा हूँ, लेकिन आगे पता नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगा, मृत्यु के समय मैं बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा, तो इसीलिए मुझे अभी आप मेरी मृत्यु आ जाए ये अच्छा है, मैं आपके चरणों में स्थान प्राप्त करूँ ये अच्छा है। तो इस श्लोक को विशेष करके श्रील प्रभुपाद बहुत बार कहा करते थे कि ये जो मेरे मन का राजहंस है, हे कृष्ण ये आपके चरणों में स्थान ले। और फिर वो बताते हैं कि क्योंकि पता नहीं कि कब, जिस समय प्रयाण काले जब मृत्यु आएगी तो फिर कफवात पित्तये, ये जो हमारा गला है, कंठ है, ये अवरुद्ध हो जाएगा। किससे? कफवात पित्तये। और ऐसा होता है मृत्यु के समय व्यक्ति बोल नहीं पाता, कष्ट होता है, और उस कष्ट में कृष्ण का स्मरण नहीं होता। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। तो भगवान के नाम ये बड़े शक्तिशाली हैं, इन नामों का उच्चारण करना और इन नामों के द्वारा भगवान का संग करना, यही भक्ति मार्ग श्रील प्रभुपाद ने हम सबको दिया है और हमें बड़ी गंभीरता से इसका पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी है आज के विषय में या कोई भी अन्य विषय में, अगर कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। विषय की चर्चा हमने प्रारंभ की थी आसक्ति और संग की, ये बहुत बड़ा विषय था, लेकिन हमने देखा जैसे ही हमने शुरू किया तो बहुत से लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ने लग गए थे, क्या ये सब संग अर्जित स्वभाव ये सब। तो फिर हमने कहा ठीक है, थोड़ा सा बदलना चाहिए ताकि लोग सोए नहीं। वैसे शास्त्रों में लिखा है कि धाम में जाकर सोना भी बड़ा लाभदायक होता है, पुराणों में वर्णन है कि आप जगन्नाथपुरी जाइए, किसी धाम में जाइए तो केवल सो जाइए वहां जाकर, तो दंडवत करने का लाभ मिलता है। और ये भी धाम है, वैकुंठ है, प्रभुपाद के द्वारा प्रकट किया गया। तो फिर यहां पर भी सोने से, आपको सोइएगा मत आप लोग, लेकिन यहां पर भी सोने से भगवान को दंडवत करने का लाभ आपको मिलता है। के दंडवत होते हैं एक अष्टांग और एक पंचांग। प्रभु जी का प्रश्न था कि धाम में जाके पूरा सो जाएंगे, लेट जाएंगे तो पूरा दंडवत करने का लाभ मिलता है, बैठे बैठे सो गए तो क्या होगा। तो हमने बताया दो प्रकार के प्रणाम होते हैं, एक साष्टांग दंडवत, सारे अष्ट अंगों के द्वारा दंडवत, और एक पंचांग, तो बैठे रहने से भी पंचांग दंडवत करने का लाभ मिल जाएगा। ईशोपनिषद यह श्लोक किसने बोला है, बोले हैं, किसका संवाद है? ईशोपनिषद कोई श्लोक नहीं है, ये एक उपनिषद है और इसमें ज्ञान दिया गया है। और इसकी शुरुआत हुई है भगवान के वर्णन से कि भगवान की क्या स्थिति है। तो हमें नहीं पता इसमें कोई संवाद है क्या ईशोपनिषद, या बट संवाद कोई नहीं है, ये प्रार्थनाएं हैं, ये जो स्वयंभू मनु ने अर्पण किए हैं भगवान के प्रति। तो कोई संवाद हमें तो नहीं पता, ईशोपनिषद में कोई संवाद है? अच्छा अच्छा, तो नहीं, किसका संवाद है ऐसा पूछा था तुम। हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न? में हम लोग इतना सुनते हैं, इतना बोलते हैं, लेकिन फिर भी जप करते समय हम लोग उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। जैसे कई लोग केवल घूम कर जप करते हैं, या बातें करते करते जप करते हैं, टीवी देखते देखते जप करते हैं, ऐसे अन्य बातें, तो ऐसा क्यों है? अगर कोई व्यक्ति ये जान ले कि अगर मैं किसी व्यक्ति की हत्या करूंगा तो मुझे फांसी होगी और मैं पकड़ा जाऊंगा और बड़ा कष्ट होगा, फिर भी जाकर हत्या करे तो उसको क्या कहेंगे? बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। तो अगर हमें पता है कि भगवान का नाम लेने से, बड़े ध्यानपूर्वक नाम लेने से हम अपने सारे कष्टों से दूर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उसको ध्यान नहीं दें तो फिर वो व्यक्ति को मूर्ख कहना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में एक अनमोल रत्न मिला है जिसकी वो वैल्यू नहीं कर रहा। तो इसीलिए जप के समय, ऑफकोर्स चलते हुए जप करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि जप करने के समय अगर किसी व्यक्ति को बहुत नींद आ रही है तो वो चल कर कर सकता है, खड़े होकर कर सकता है, कम से कम वो भगवान का नाम तो ले रहा है। लेकिन जप के समय अन्य कार्य करना ये बड़ा गलत है, और ये एक अपराध है भगवान के प्रति, क्योंकि हम जप के द्वारा भगवान का, अभी हमने बताया नाम के द्वारा भगवान का संग होता है, और हम भगवान का संग कर रही है इस तरह है कि कोई मंदिर में आए और हमसे कहे कि प्रभु जी आप कृपया करके मेरे घर पे आइए, मैं बड़ा तुच्छ व्यक्ति हूँ, आप प्लीज़ प्लीज़ आइए आइए। तो हम इसमें चलो ठीक है जाएंगे, हम जाएँ और वो दरवाज़ा खोले और देखे कि हम खड़े हैं और दरवाज़ा बंद कर दे, कोई गया है घर पे बुलाया है और वो दरवाज़ा बंद कर दे, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसी तरह है, जप के द्वारा हम भगवान का संग कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, और लेकिन जब भगवान आए तो हम दरवाज़ा बंद कर दें। तो इसीलिए कभी भी जप के समय और कोई कार्य नहीं करना चाहिए, फ़ोन पे बात, टेलीविज़न देखना। एक बार एक भक्त बतला रहे थे, उनके पिताजी जप किया करते थे लेकिन उनको क्रिकेट में बहुत रुचि थी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि डे एंड नाइट मैच या कहीं बाहर मैच चल रहा है जो सुबह सुबह चलता था, तो वो जप करते रहते थे और जैसे ही कुछ ज़ोर से आवाज़ होती थी, आप लोग जानते हैं ना क्रिकेट में बात कभी कभी बीच बीच में अचानक ज़ोर से आवाज़ हो जाती है, हल्ला होता है, तो ज़ोर से आवाज़ होती थी तो अपने पुत्र की ओर देखते थे, क्या हुआ, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो बतला रहे थे हमें कि हमारे पिताजी ऐसे जप किया करते थे। चलिए, ऐसा जप ठीक नहीं है। परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति को की भक्ति का फर्क बताइए। अच्छा, अगर भक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में की जाए और अनुकूल परिस्थिति में की जाए तो इन दोनों में क्या अंतर है? अनुकूल परिस्थिति में की हुई भक्ति ये हमारे हृदय को शुद्ध करेगी, हमें उस आनंद को प्रदान करेगी जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति में की हुई भक्ति हमारी तीव्रता को बढ़ा देगी भक्ति करने के लिए। अगर हमारे लिए कभी कभी अनुकूल परिस्थितियां भी बाधा बन जाती हैं, वैसे अगर देखा जाए तो उल्टा होना चाहिए, अनुकूल परिस्थिति में बड़ी अच्छी भक्ति होनी चाहिए और प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भक्ति में उल्टा होता है। कभी कभी अनुकूल परिस्थितियाँ हमारे लिए ये एक भोग ऐश्वर्य सुविधा बन जाती हैं जिससे हम भक्ति नहीं कर पाते। जैसे सब कुछ अनुकूल है, आपके घर में कोई विरोध नहीं है भक्ति करने के लिए, आपके घर में सारी सुविधाएं हैं, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो व्यक्ति थोड़ा सा भक्ति नहीं कर पाता। लेकिन अगर प्रतिकूल है परिस्थितियां, हम उत्तर दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये प्रतिकूल परिस्थिति में की हुई भक्ति उसके बारे में चर्चा है, प्रतिकूल परिस्थितियों की चर्चा नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भक्ति कर सकता है वो बड़ी तीव्रता से भक्ति करता है। जैसे परिस्थितियां ठीक नहीं है, घर में बहुत विरोध हो रहा है, मंदिर नहीं जाना नहीं तो गोली मार दूंगा, आई मीन गोली तो नहीं, जो मंदिर नहीं जाना, या यू नो खाना अगर वो छोड़ना चाहता है तो नहीं खाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है, तो सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। लेकिन उसमें जो भक्ति कर लेता है उसकी भक्ति में बड़ी तीव्रता आती है। अनुकूल परिस्थिति में तो सब लोग भक्ति कर लेते हैं, सारी स्थितियां ठीक हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, अगर कोई कहता है कि ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर ये रोज मंगल आरती करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अनुकूल परिस्थिति है, क्योंकि वो टेम्पल हॉल में सोना पड़ता है, वो झाड़ू लगाने जो आते हैं वो उठा ही देते हैं, तो वो उठना ही पड़ता है, क्या करें, तो अनुकूल परिस्थिति है। लेकिन अगर कोई घर में है, घर में रहकर रोज मंगल आरती आता है, तो उसको कहना चाहिए कि हाँ ये थोड़ी अच्छी बात है, प्रतिकूल परिस्थिति, इतना दूर घर है, सुबह सुबह बारिश हो रही है, वो रेनकोट पहनकर वो सारा अपना मुंह ढक कर और बाइक के ऊपर बाइक चलाकर दिख नहीं रहा है सामने, फिर भी आ रहे हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में, ये भक्ति है, उसमें तीव्रता है। तो इसीलिए प्रतिकूल परिस्थिति की भक्ति और अनुकूल परिस्थिति की भक्ति में ये अंतर है कि अनुकूल परिस्थिति में कभी कभी हम लोग डावाडोल हो सकते हैं अगर भक्ति कर रहे हैं तो, और प्रतिकूल परिस्थिति में अगर भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में जरूर आगे बढ़ेंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हमारी परिस्थितियां अनुकूल हैं तो हम जबरदस्ती उसको प्रतिकूल बनाएं, कि हमारा घर अगर सामने ही है मंदिर के तो हम जाकर 2 किलोमीटर दूर रहे हैं, कि नहीं हमें प्रतिकूल परिस्थितियां चाहिए, ऐसा नहीं। अनुकूल परिस्थितियों की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में बह नहीं जाना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? कीर्तन करेंगे और कीर्तन के बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। आज वैसे ये प्रवचन माधव प्रभु देने वाले थे, लेकिन थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आ नहीं पाए। तो इसलिए आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत सहन करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहते हैं। हरे कृष्ण।